ओम शांति, गुड मॉर्निंग। जो आपकी फिफ्थ बुक है, वैसे तो सारे सिलेबस, सारी किताबें, सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हरेक में आपको अच्छे नंबर लेने हैं, लेकिन कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें मेहनत कम और नंबर ज्यादा मिलते हैं। इसी तरह यहां भी जो फिफ्थ बुक है आपका, फिफ्थ कोर्स है, उसमें कंपैरेटिवली इतनी मेहनत नहीं है जितने आपको मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने सही ढंग से उसको प्रेजेंट। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में पर्सनल प्रोग्रेस मैनुअल, जो एक बुक आई है आपके पास, जो उस दिन थोड़ा ब्रीफ मैंने बताया था, और फिर वो फैकल्टीज आपको हर एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। क्या कोई नहीं बताए? अरे सभी टीचर्स को दिया हुआ है 7 to 7:30, आप बोलते क्यों नहीं है? नहीं, जो जिसका नाम है उसमें 7 to 7:30 उनको हर अक्षय दी हुई है। आज किसका है? नहीं हुआ। आज किसका है? सावित्री बहन का, सविता का। हाँ, उसको बोलना, मैं बोल दूंगा उनको। चलो बाद में, बीच में जो रह गए हैं वो करवा देंगे, आपको बता देना जो कौन कौन से रह गए हैं। तो वो 7 to 7, अगर किसी का लेक्चर चलता है उसको बंद कर दो 7 बजे, कह लीजिए अब दूसरा है हमारा 7 to 7:30। हाँ हाँ, कल गुलियानी साहब का है, सावित्री बहन का भी है, हो जाएगा। जो रह गए ना, जब आप यहां से जाएंगे आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हमारे पास बहुत सफिशियंट टाइम है। मैं इसको बता रहा था कि वो बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें आप कुछ नहीं करना। थ्योरी में वहां से क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं आपके समझ में आए या ना आए, यहां तो क्वेश्चन आउट हो गया। बीए एक्सरसाइज है, मेडिटेशन करना है, उसमें अपना अनुभव लिखना है। बस एक ध्यान रखना है जो उस दिन बताया था कि उस बुक में ओवर राइटिंग ना हो, जबरदस्ती लिखने की कोशिश ना करें। जितना स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें एक लाइन कम रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इंप्रेशन ऐसा पढ़ना चाहिए। दूसरा, उसमें कहीं कटिंग वटिंग ना हो, उस पर आप कोई पेपर चढ़ा लें ऊपर, ताकि जब आप प्रेजेंट करें तो बिल्कुल नई किताब आपको लगे। यहां आपको उसके ऊपर कुछ नहीं लिखना, घर जाके आराम से, यहां करना चाहते हैं तो रफ पर आप लिखें और घर जाने के बाद इत्मीनान से आप उसमें उतार दें। उसमें 50 में से आपके 48-49 मार्क्स तक आ सकते हैं। उसका जो दूसरा पार्ट है वो भी आपके हाथ में है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसका एक आधा पीरियड और लिया जाएगा, उसमें दिया हुआ सिलेबस में कि किस प्रकार से अपने टॉपिक्स का सिलेक्शन करेंगे, उसको फाइनल करेंगे, फील्ड प्रोजेक्ट। इससे बच्चे बहुत डर जाते हैं, जब फील्ड प्रोजेक्ट है तो उनके दिमाग में आता है कि हमें फील्ड में भागना पड़ेगा। बहनें कहती हैं हमारे पास इतना कहां टाइम है, बड़ी बहनें हमें इतना काम देती है, अब 8 दिन के बाद जाएंगे देखना कैसी, कि 8 दिन मस्ती मारी, अब यहां काम करो। और वाकई बहनों के पास बहुत काम होता है, बहुत जिज्ञासु आते हैं, उनके पास कहां टाइम है फील्ड में घूमने का। ये नाम फील्ड प्रोजेक्ट है, आपको फील्ड में कहीं नहीं जाना, आपको अपने सेंटर पर बैठे बैठे ये काम आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक आध दिन आप मेहनत करेंगे, वो मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको। कुछ बातें हैं जिसमें आपकी अपनी नहीं चलेगी, जो यूनिवर्सिटी ने डायरेक्शन दी है उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पहला जो ऊपर आप चिपकाए, जैसे यहां पर देना है, यह आपकी किताब है, इसका ये फ्रंट पेज है, इस पर ये टाइटल होगा। आप हिंदी में करना चाहें या इंग्लिश में करना चाहें वो आपकी मर्जी है,
हाँ जो आपकी मर्जी है, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश ना करें। अशोक भाई को मैंने दे दी होंगे कंप्यूटर में, और जब आप जाएंगे उससे एक दिन पहले आप ले लेना वो सारा। ये एक सैंपल है, करना तो अपने हिसाब से, आपको इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आप नए हैं, अगले साल तो आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे। सबसे पहले आप जो टॉपिक आपने लिया है वो 50-60 टॉपिक आपके दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, उसमें से कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट कर लेंगे। गलती आप क्या करते हैं और वो बाद में फिर रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि टॉपिक भेजना पड़ता है और जब वो उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी उसके बाद आप लिखना शुरू करते हैं। लास्ट ईयर एक बहन ने भेज दिया वुमेन एम्पावरमेंट एक टॉपिक है, वो उसका रिजेक्ट होगा आ गया। वो बहन मेरे पास आई कि आपने तो कहा था कि जो इसमें टॉपिक है उनको अगर आप लेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, अगर बाहर से लेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम आए। मैंने तो उसी में से लिया है वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैंने उसको समझाया कि वुमेन एम्पावरमेंट दिया हुआ है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस दी हुई है, वो सजेस्टेड एरिया है आपके, वो कोई टॉपिक नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट में आप क्या करना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में कहां की स्टडी करना चाहते हैं, तो वो आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। जैसे एटीट्यूड ऑफ मैन टुवार्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, नारियों के प्रति पुरुषों का क्या नजरिया है, इस पर आप स्टडी करना चाहते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की लिटरेसी के ऊपर भी बात कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट का डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी आप टॉपिक ले सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक बन सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट पर आपने कहां स्टडी की है, आपके अपने मोहल्ले की भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर स्टडी हो सकती है, आपके अपने गांव की भी हो सकती है, आपके अपने टाउन की भी हो सकती है, पूरे स्टेट की भी हो सकती है, पूरे इंडिया की भी हो सकती है। जो पीएचडी थीसिस होती हैं वो पूरे वर्ल्ड से भी रिलेटेड सैंपल लिए जा सकते हैं। तो आपको अपने टॉपिक में बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहां की स्टडी करना चाहते हैं आप। जैसे यहां पर है स्टडी ऑफ सिलेक्टेड पीपल ऑफ आगू रोड, तो जहां आप रहते हैं वहां की आप स्टडी कर लें। जितना छोटा आप टॉपिक लेंगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि यहां पर आपको एक ही गांव में जाना पड़ेगा। अगर आप पूरे राजस्थान स्टेट का कर लें तो हर राजस्थान स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहां का आपको सैंपल लेना पड़ेगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, फिर तो आपको वो टॉपिक लेना होगा, क्योंकि आपके पास एक साल, दो साल, तीन साल है। लेकिन यहां पर आपके पास 3 महीने हैं, और 3 महीने में भी 4 पेपर और आपको पूरे करने हैं, और एक ये मुसीबत आ गई। तो इसलिए जितना छोटा आप टॉपिक लेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। जरूरी नहीं आप पूरे गांव का लें, मोहल्ले का भी ले सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन के ऊपर आप करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि जितने सीबीएसई के स्कूल है पूरे इंडिया उनको लें, जितने पूरे स्टेट में सीबीएसई के उनको लें, बल्कि आप जहां रहते हैं वहां के सीबीएसई स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज में, एक दो कॉलेज में की स्टडी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका टॉपिक सिलेक्ट हो जाता है तो 60% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार दूसरे कहने से आप टॉपिक ले लेते हैं, टॉपिक आपने ले लिया, वो अप्रूव भी हो गया, काम करना शुरू करते हैं, 2 महीने आपने काम किया और उसके बाद पता लगता है इसका डाटा ही अवेलेबल नहीं है। जिस कंपनी के पास जाते हो कहते हैं ये तो हमारे कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ही नहीं। तो उस टाइम तो आपने किसी कहने से ले लिया, आपने सोचा नहीं कि शुरू से लास्ट तक जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है क्या मेरी पूरी होंगी। तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार चेंज करने में एक तो टाइम वेस्ट होता है और दूसरा चेंज भी नहीं होता। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें कि टॉपिक बहुत सोच समझ कर आप लें। पहले से आप देख लें कि उससे रिलेटेड जो मुझे चाहिए क्या मुझे मिल जाएगा, या बीच में मुझे टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे वेस्ट होंगे, एनर्जी वेस्ट होगी, और फिर दोबारा उसके अप्रूवल लेने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, उसके एक डेट है, उस डेट तक आपको भेजना है। इसके बाद ये प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा है जो यूनिवर्सिटी से आया है, ए फील्ड प्रोजेक्ट सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। पार्शियल फुलफिलमेंट, इसका मतलब ये है कि अगर आपने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, वाइवा भी दे दिया और जो थ्योरी के चार पेपर वो आपने नहीं दिए तो आपको डिप्लोमा नहीं मिलेगा। ये अपने आप में डिप्लोमा नहीं है, उस डिग्री का पार्शियल फुलफिलमेंट है। जब आप वो भी देंगे, इसको भी सबमिट करेंगे, तब आपको डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री मिलेगी। इसलिए कहते हैं पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर पीजी डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी बाई। ये आपको अपना नाम लिखना है और उसके बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, क्योंकि इसके अभी फर्स्ट पेज को बनाने की इतनी जल्दी नहीं है। बहुत सारे भाई बहन जिनका एनरोलमेंट नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, काम करना शुरू कर दीजिए। ये तो लास्ट में अप्रैल या मई में या इवन एग्जाम के बाद जब टाइपिंग के लिए आप भेजेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी और उस टाइम आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, आपका एनरोलमेंट नंबर भी आ जाएगा। फिर ये जिसको हमें सबमिट करना है, जहां भेजना है, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन अन्नामलई यूनिवर्सिटी चिदम्बरम, 2012 भी लिख सकते हैं आप, जून जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि कब आपने सबमिट किया, आपका जुलाई में होता है वाइवा, अगस्त में होता है। अगर आपको एक महीना पहले आ जाती है उस डेट को है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो 2012 भी लिख सकते हैं, वो महीना भी लिख सकते हैं। तो इसमें ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको वही लिखना है। जो पॉइंट क्लियर ना हो तो आप पूछते जाएंगे। तो फ्रंट पेज है ये, तो आपको एज इट इज करना है, इसकी स्लाइड्स मिल जाएंगी। ये आप टाइप करवाएंगे जैसे बाकी प्रिंट होगी तो उस पर यही पेस्ट हो जाएगा, हाँ कवर पेज। ये कुछ हमारे डिप्लोमा जो लास्ट जिन्होंने किया है उनके फील्ड प्रोजेक्ट्स, अशोक भाई है यहाँ, कौन लाइब्रेरी के साथ ऑफिस है हमारा, वहां आप देख सकते हैं, थोड़ी गाइडेंस वहां से ले सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं उनको किस प्रकार से हमें बनाना है। दो चार बहुत अच्छे हैं, वो मैं बाहर निकलवा दूंगा, वो आपको वहां तो नहीं मिलेंगे घर के लिए, लेकिन वहां घंटा दो घंटा बैठकर उनको देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हैं, हाँ हाँ बाहर भी ले सकते हैं, बस उसके लिए आपको भेजना पड़ेगा वो अप्रूव हुआ है ना वो। अगर आपने बाहर लिया तो जब अप्रूवल लेटर आ जाए उसके बाद काम स्टार्ट करें, और जो इसमें से लिया हो तो अप्रूव्ड है, उसमें तो आ ही जाएगी। आप हिंदी में बना सकते हैं, एक भाई कह रहे मैं दोनों बना दूं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, पहला इंग्लिश फिर हिंदी पहला इंग्लिश, नहीं ऐसा नहीं करना आपको, आप क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता। आयुर हिंदी, हाँ तो वैसे दिखा दिया, कहे आपने पहला पेज इंग्लिश का था फिर हिंदी का लास्ट कह रहे थे, मैं तो दिखाने के लिए एक मॉडल के लिए कह रहा था, आपको ऐसा नहीं बनाना, आपको आयुर इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक जो आप चाहते हैं। हाँ पीजी डिप्लोमा में चल जाएगा अगर आपका मीडियम हिंदी है, और पर्टिकुलर ये वैसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो पीजी डिप्लोमा एमएससी में नहीं हो सकता लेकिन यहां आप बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एमएससी में दो डेजिटेशन यूनिवर्सिटी में जाती है, वहां इवेल्यूएट होती है, एक यहां होगी और फिर कुछ नंबर वहां से लगते हैं कुछ यहां लगते हैं। पीजी डिप्लोमा में यूनिवर्सिटी नहीं जाती, यहां जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वही मार्क्स देगा, एक इंटरनल होता है एक्सटर्नल। तो यहां अगर कोई ऐसा है कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी में डाटा नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम है, तो आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। हाँ हिंदी वाले कर सकते हैं, कर तो नहीं सकते वैसे, लेकिन हमने जब तक दो चार साल नहीं आते हिंदी की नहीं बनती तब तक उनको छूट दी हुई है, तो आप उसमें से एक हैं, लक्की हैं, आप कर सकते हैं।
एग्जामिनर को कुछ गाइडलाइन जाते हैं क्या कि कैसे मार्किंग कर रहे हैं?
हाँ एग्जामिनर ही आता है, वहाँ जाएगी गाइडलाइन, जब आपके एमएससी का होगा तो सारी गाइडलाइंस जाएंगी।
पर डिफरेंट एग्जामिनर्स का डिफरेंट मापदंड
नहीं, एक जनरल सी गाइडलाइन जाएंगी। एग्जाम में कॉपियां चेक होती हैं, वो 50 एग्जामिनर होते हैं, फिर वो तो उनके ऊपर है ना, वे किस हिसाब से देखते हैं वो। ये क्लियर होगा, दोनों में से एक जो आपको हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए। इसके बाद जो आपकी बुक आई है, बुक में एक वीमेन एम्पावरमेंट का चैप्टर है और वीमेन एम्पावरमेंट में भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस है उसको देखना चाहें तो एक तो मेथड ये है कि हर पेज को पलटते रहो और उसके बाद देखो कहां आता है। और एक ही मेथड है कि शुरू में इंडेक्स दिया हुआ है और उसमें वुमेन एम्पावरमेंट लिखा हुआ है 70 से 80 पेज तक, फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 70 पेज पर जाओ वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर 80 पेज के बीच में जो भी आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। ये भी ठीक इसी प्रकार से है, मैं तो वैसे एग्जाम्पल या 70 जरूरी नहीं 70 है, ये भी ठीक इसी प्रकार से है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है ये प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में रखा जाएगा, दूसरों के पास भी जाएगा, मतलब बीच में से कुछ वो देखना चाहते हैं तो इसके बजाय वो एक एक पेज पलटें, एक आप इंडेक्स बना देंगे और उस इंडेक्स में के हिसाब से वो तो कुछ देखना चाहिए, देख सकता है। एग्जामिनर भी उस इंडेक्स के हिसाब से कुछ देखना चाहिए अंदर, वो देख सकता है, इजी हो जाएगा। इसमें दो टाइप से नंबरिंग की हुई है, आपको उन्हीं फॉर्म में नंबरिंग करनी पड़ेगी जो एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत लोगों की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। आज से ही आप गुलियानी भाई के पास चिपट जाएंगे, मुझे कैसे करना है, क्या करना है, 12 तारीख तक आप बिजी हो जाएंगे, वो भी बिजी हो जाएंगे। जिसने आपकी हेल्प की है, कोई हमें एक गिलास पानी का देता है तो आप कहते हैं थैंक यू, और जिसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में आपकी हेल्प की होगी, क्या उसका आभार नहीं करेंगे, धन्यवाद नहीं करेंगे? तो वही एक्नॉलेजमेंट है। आपको लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, आपको अपनी बड़ी बहनों की जरूरत पड़ेगी और भाइयों की जरूरत पड़ेगी, और सबसे जरूरत तो किसकी है, उस परम पिता परमात्मा की, जिन्होंने आपको इतनी शक्ति दी है। तो यह एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि जहां से भी आपको हेल्प मिली है उसका आप आभार प्रदर्शन करें, उसका आप धन्यवाद करें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपकी 4 लाइनों में हो, 10 लाइन में हो, 1 पेज में हो, जितना आप ठीक समझते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा पेज इस पर ना लिखें, 1 पेज मोर देन सफिशियंट, ज्यादा 1.5 पेज लिख दें, क्योंकि इसमें तो उनका एक्नॉलेज भी करना है। इसके बाद ये जो 3 चीजें हैं, अगर आप इसको करते हैं, ये ऑप्शनल है, लिस्ट ऑफ टेबल्स। आपके 4-5 चैप्टर होंगे, हर चैप्टर में वाले टेबल्स हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 8 है, किसी में 10 है। तो एक अच्छा रहता है कि उसका इंडेक्स भी पहले पता लग जाए आपको, ताकि जो लोग देखें वो बार बार उन टेबल की बजाय शुरू में देख लें कि भाई ये इंडेक्स है, दूसरे चैप्टर में इतनी टेबल है, तीसरे में इतनी, चौथे में इतनी है। तो लिस्ट ऑफ टेबल वो भी आप यहाँ पर पेज नंबर डाल देंगे, जैसे यहाँ पर है भी, दूसरे पेज पर दूसरा, तीसरा और चौथा, 3 पेज पर लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, तो उसी पेज पर वो जाएगा। लिस्ट ऑफ डायग्राम्स, हमने कुछ डायग्राम भी बनाए हैं, इसमें मान लो 5वें पेज पर है। ये तो पेज अलग अलग होंगे आपके, आपने जहां रखे होंगे वही लिखेंगे आप। ग्राफ्स बनाए हैं आपने, और बहुत ढंग से आप प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो सिर्फ अगर आपकी टेबल 1 या 2 ही है, फिर तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, अगर है ही 1-2, हर चैप्टर में नहीं है। अगर आपकी बहुत सारी टेबल्स हैं तो उनको अभी एक आपको बनाना पड़ेगा, किस किस पेज पर आपने उनको लिखा है। उसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होता है, ये रोवन में लिखा जाएगा। अब आपके 5 चैप्टर बना लो या 6 बना लो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैंडर्ड, क्योंकि आपके पीजी डिप्लोमा में आपको बहुत ज्यादा लिखना, 10,000 वर्ड्स हम कहते हैं कि 10,000 में 10% प्लस माइनस, 9,000 वर्ड्स आ जाए, 11,000 आ जाए, अप्रोक्सीमेटली 40-50 पेज हो जाए, 60 हो जाए तो भी कोई बात नहीं, 40 पेज से कम ना हो, नॉट लेस देन 40 पेजेस, 60 तक हो, बहुत लंबा ना होना है, 60-70, क्योंकि जो आपकी डिजिटेशन है एमएससी में, उसमें 80-120 पेज प्रस्ताव है यूनिवर्सिटी तरफ से, इसमें थोड़ा छोटा होता है, तो इसमें 50-60 पेज आप कर सकते हैं, लेकिन 40 से कम ना हो आपके पेज। इसमें जैसे 5 चैप्टर लिए गए हैं, इसमें अपने हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है वही लिखना आपको। जो इंट्रोडक्शन है आपका, जिसे आपने व्यूमन एम्पावरमेंट लिया, अभी आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग, उसमें उसकी इंट्रोडक्शन देनी है, व्यूमन एम्पावरमेंट क्या है, कैसे है, स्कोप क्या है उसका, प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या परेशानी उनको भुगतनी पड़ती है। इसके साथ साथ 3 चीजें इसमें और लिखेंगे, वो इसमें है अंदर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। आपने जो प्रोजेक्ट लिया, आपने स्टडी कहते हैं हम इसको, रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस है? अगर उसके समाज में इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो उसका फायदा क्या होगा? आपको समाज को कुछ देने वाले हैं तो समाज में उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, आप जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है आपके? और तीसरा लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। लिमिटेशंस का मतलब है कि जैसा मैंने बताया कि आप अपने प्रोजेक्ट को एक गांव तक सीमित रख सकते हैं, अपने मोहल्ले तक सीमित रख सकते हैं, अपने पूरे शहर तक सीमित रख सकते हैं, उसमें आप मैरिड को शामिल कर सकते हैं, जब सैंपल लेंगे आप दोनों को शामिल कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों को शामिल कर सकते हैं, 50 का सैंपल ले सकते हैं, 50 लोगों से पूछा, 100 लोगों से पूछा आपने, किसी ने 40 से पूछा, यानी किन सीमाओं में रहकर आपने अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया है, उसे कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। ये जो दो तीन चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, आप चाहें तो इसका एक अलग टॉपिक भी बना सकते हैं, और क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे, तीनों मिलाकर 7-8 पेज बनेंगे आपके, तो इसलिए आप फर्स्ट में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब एक में इंक्लूड कर लें। जब अगर दूसरा बनाएंगे चैप्टर इसका अलग से तो 6 चैप्टर बन जाएंगे, उसकी उतनी बात है, या फर्स्ट में कर लें क्योंकि 5-6 पेज का है।
सेकंड कौन सा बन गया
सर?
इंपॉर्टेंट
स्टडी,
इंपॉर्टेंट
ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। स्टडी का मतलब जो आपने अपना टॉपिक लिया है, हाँ, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है समाज में, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो टॉपिक क्यों लिया आपने, उसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका, आप यहां पढ़ने आए हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एमफिल और पीएचडी की हो, कितने लोग हैं जो जिन्होंने एमफिल की हुई है कोई नहीं है उसमें तो है, पीएचडी वाला भी नहीं होगा कोई। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है हिंदी में कहते हैं साहित्य की समीक्षा, अर्थात जो आपने टॉपिक लिया है और उसका जो मेजर एरिया है आपका वो है वुमेन एम्पावरमेंट। उसके टॉपिक तो बहुत हो सकते हैं लेकिन मेन जो थीम है आपका वुमेन एम्पावरमेंट है, तो रिव्यू में क्या इस फील्ड पर इससे पहले कोई काम हुआ है उसको आप रिव्यू करते हैं। मान लिया इससे पहले 5 लोगों ने काम किया, इसका एक्चुअल मकसद क्या होता है, पीएचडी जब आप करेंगे तो वहां ज्यादा काम आता है, कि जो आप काम कर रहे हैं कहीं वो रिपीटेशन तो नहीं हो गया, पहले वाले लोगों ने भी वही काम किया है, वही कंक्लूजन निकाले हैं और वही आपका है, फिर आपकी इंपॉर्टेंस क्या रही, सिर्फ उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ताकि आपको पता लग जाए इससे पहले कौन कौन से ऑथर ने इसके ऊपर काम किया है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, उनके क्या कंक्लूजन था, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है उससे थोड़ा डिफर हो जाए और समाज को उसका फायदा हो जाए, ये पर्पज है। अब है कि आपको कैसा पता लगा, वैसे तो इसका है भी लाइब्रेरी में आप जा सकते हैं लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा, मैंने फिर बताया कि आपके लिए 2-3 महीने हैं। साइंस ने, बाबा ने कहा साइंस ने बहुत तरक्की की है, बाद में वही दूसरे पर्पज के लिए काम आएगी, आप दूसरे पर्पज के लिए काम आ रही है, नेट पे जाएं आप, इंटरनेट नेट चलाना किस किस को आता है, अरे सारे एक्सपर्ट है, चलो जिनको नहीं आता वो अपने भाई बहन से कर सकते हैं। नेट पर जाएं, विमेन एम्पावरमेंट टॉपिक डालें, डैश रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बस इतना काम करना है, क्लिक करें वो 8-10 लोगों की थीसिस आ जाएगी, इस पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ जाएगा, आपको उसमें सारांश लिखना, उन्होंने एमफिल की है, पीएचडी की है, कोई प्रोजेक्ट किया है, हमें तो सिर्फ उनकी फाइंडिंग्स करनी है। एक ऑथर के 2 पेज लास्ट में होते हैं, वो समाप्तिज में होंगे या लास्ट में होंगे जहां उनका कंक्लूजन होगा, रिकमेंडेशन होगी, तो 2-3 पेज एक ऑथर के, इसी प्रकार 4-5 ऑथर्स का आप देख लेंगे 8-10 पेज बन जाएंगे। आपको उसमें कुछ नहीं करना, कॉपी करनी है, कॉपी करने में तो माहिर हैं आप, क्योंकि बाबा ने कहा है कि कॉपी करो बस मुझे, और आप कॉपी करते हैं, बाबा जो कहता है उसकी कॉपी आप रोज करते हैं, तो इसलिए वो कॉपी करनी है, आपको अपना सजेशन देना ही नहीं है उसने ऐसा क्यों कहा, वो सिरदर्दी आपकी नहीं है, जब आप अपना करोगे तब कहोगे ये उसने जो कहा वही एज इट इज, आपको 2-2 2.5 पेज एक ऑथर के लेकर वहां से नेट से दशक पेज हो जाएंगे, वो आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसमें आपकी कोई मेहनत नहीं है। 8 पेज 10 पेज 6 पेज इसमें कोई ऐसा नहीं है। सभी ऑथर करीब 5-4 ऑथर ले लें आप, क्योंकि आपके यहां वो ज्यादा, मैं कह रहा पीएचडी वाला बात नहीं है। इसका मतलब जो पहला चैप्टर है वो मैं इसलिए बता रहा कि जो चैप्टर दिए हुए हैं, जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसमें 40 टॉपिक ऐसे हैं जिसका लिटरेचर मेटेरियल आपको अपनी बुक से मिल जाएगा। कहीं ना कहीं बुक में वो चैप्टर्स हैं, और जो बुक में चैप्टर हैं तो कुछ तो वहीं से मिल जाएगा, कुछ आपको थोड़ा बहुत बाहर से कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसके अलावा लेंगे बाहर से, फिर आपको सारा सारा बाहर से कलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि जो आपकी पीजी डिप्लोमा वाली किताबें हैं उसमें अगर वो टॉपिक दिया हुआ है तो उसको आप लेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसमें पहला चैप्टर तैयार करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा बहुत आप इधर उधर से ले सकते हैं। हाँ, प्रिंट आपको टाइप करवाना, हाथ से नहीं जाएगा वो, आपका जो फील्ड प्रोजेक्ट है वो टाइप होगा। हाँ, जैसे बाकी चैप्टर करवाओ नेट से, एज इट इज प्रिंट आउट ले लो। अब बाकी चैप्टर को आप उसको दोगे टाइपिस्ट को, कंप्यूटर वाले को भी इसको करो तो उसमें वो भी दे दोगे आप, हाथ से लिखना है। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपका बेस है, इसके ऊपर स्टडी बेस करती है, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। 5-6 पेज बनेंगे। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं डाटा कलेक्ट करने के, बहुत सारे मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो क्वेश्चन मेथड है। इसमें क्या करते हैं आप, आपके अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। कितने क्वेश्चन होने चाहिए, मिनिमम 20 होने चाहिए, 20 से कम क्वेश्चन ना हो। मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप ना करें, 30-35 मैक्सिमम 40, लेकिन 20 क्वेश्चन से कम नहीं होने चाहिए। उस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्वेश्चन निकाल लिए, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट है तो उससे रिलेटेड 20-30 क्वेश्चन आप निकालेंगे, 100 क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या आप नारी सशक्तिकरण चाहते हैं, ये आपने लोगों से पूछा, क्या वुमेन रिजर्वेशन बिल इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या नारियों को 4 दीवारी के बाहर भेजना चाहिए, तो इस टाइप के मतलब बहुत सारे 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन निकालने में आपको प्रॉब्लम है तो भी आप अपने आखिरी हथियार को यूज करेंगे, नेट से भी वो क्वेश्चंस निकल सकते हैं। अपना टॉपिक डालिए, उसमें लिखिए क्वेश्चनर, और वो अपने आप क्वेश्चन बनकर आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में आप ले सकते हैं 20-25-30 क्वेश्चन। क्वेश्चनर उसमें लिख देंगे। अब समझिए इसको, आपने 20 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, उसको आपने टाइप कर लिया, उसके 3 कॉलम बनाए, क्योंकि जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप उसका आंसर देंगे। लोगों से पूछना है, 50 लोगों को आपने सैंपल लिया है, कुछ लोग आपकी बात को मानेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, 100% जरूरी थोड़ी है, बी के तो कहेंगे ठीक है होना चाहिए, बहनों को आगे रखना चाहिए, बहुत से ऐसे सिर्फ रे भी हो सकते हैं, कहते क्या जरूरत है, पहले एम्पावर्ड है और हमारे सिर पे चढ़ेंगी, ऐसे नहीं हो सकते हैं। हर टाइप के लोग मिलेंगे। जब आप सैंपल लेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखें कि वो खाली बीके ना हो, आपकी स्टडी नहीं बनेगी, खाली लिटरेट ना हो तो भी नहीं बनेगी, खाली शहर के ना हो, आप में मिक्सचर हो। मिक्स वेजिटेबल अच्छी लगती है ना, खिचड़ी आप रोज खाते हैं मिक्स, आपके में गांव के भी कुछ लोग हों, शहर के भी हों, कुछ पढ़े लिखे भी हों, कुछ अनपढ़ भी हों, कुछ बीके भी हों, कुछ नॉन बीके भी हों, क्योंकि आपको थोड़ा पता लग जाएगा, हर वैरायटी का पता लग जाएगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन बना लिया, मैं बता रहा, कोई आपकी बात से सहमत होगा, कोई असहमत होगा, कोई कहेगा मैं जवाब ही नहीं देता, आप कंपेयर तो नहीं कर सकते, जरूर दो, तो इसका मतलब उसको भी आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। तो हर क्वेश्चन के, अभी बताओ,
नहीं,
तो मैं फर्स्ट पेज करवा, सारा आएगा, पूरा प्रोजेक्ट आएगा आपका। उसके 3 कॉलम बना लिए आपने, एग्री, डिसएग्री, नो कमेंट। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, असहमत हूँ, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आप उनसे क्वेश्चन पूछें, पहला आपने क्वेश्चन पूछा क्या आप नारी सशक्तिकरण चाहते हैं, एक भाई ने कहा चाहता हूं, दूसरे ने कहा नहीं चाहता, एक कहने लगे मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। तो जब आप तीन कॉलम उसके ऊपर बना लेंगे तो उनको एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, आप 50 लोगों से पूछना चाहते हैं तो उसके साथ 70 आप फोटो कॉपी करवा लेंगे, तो उनको एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि इसमें तीन कॉलम है, तीन में से एक को ही टिक करना है। एक भाई ने लास्ट ईयर क्या किया, उनसे यहां भरवा रहे थे हम, उसने तीनों को टिक कर दिया। मैं तीनों को क्यों कर दिया, कह मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता। अरे आप तो नाराज नहीं करना चाहते, जो भर रहा बेचारा उसका तो क्या होगा, उसका भी सोच लो ना। तो आप उनको कह दीजिए कि आपको एक को ही टिक करना है, क्रॉस नहीं करना, टिक करना बाकी छोड़ दीजिए, और ये आपके रिसर्च पर्पज के लिए यूज की जाएगी, इसका हमारा कोई नहीं है। अब कहां से लाएंगे वो जिनसे पूछना है, दो तीन मेथड है उसके। पहले वाला मेथड को आप यूज ना करें, पहले वाला मेथड क्या, जो हम पीएचडी और एमफिल में करते हैं कि उनको बाय पोस्ट भेज देते हैं, और जब बाय पोस्ट भेज देते हैं हमें बिटर एक्सपीरियंस है, कोई लौट के नहीं आता उसमें से, रद्दी के टोकरे में चले जाते हैं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है हमारे लिए काम करने का, बार बार उनके धक्के खाने पड़ते हैं। दूसरा मेथड क्या है, अगर बहने सेंटर पर रहती हैं, आपके यहां बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, आजकल तो प्लेटिनम जुबली भी चल रहा है, वैसे प्रोग्राम होते रहते हैं, कोई प्रोग्राम है, बहने हर भाई बहन को जानते हैं, 50 का आप सैंपल लेना चाहते हैं तो 50 की एक लिस्ट बना लीजिए, अपनी बहन को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आज मुझे कुछ डाटा इनसे कलेक्ट करने हैं, अगर आप परमिशन दें तो मैं इनको इन्वाइट कर लूं फंक्शन के बाद, आप थोड़ा ज्ञान भी सुना देना और टॉली भी दे देना। बहन कहते ठीक है, बहनें तो होती हैं ज्ञान सुनाने के लिए, तो आप उनको छोटी छोटी स्लिप दे दीजिए फंक्शन में ही कि बड़ी बहन आपसे मिलना चाहती है, वो तो खुश हो जाएंगे, आज तक तो बड़ी बहन ने पूछे नहीं और आज इन्विटेशन आया, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, आपके हॉल में जगह होगी जहां मुरली सुनाते हैं, और कोई है उनको बैठा लीजिए। जो उनको बैठा लेंगे, एक बहन भाई और आपके पास होगा, जो आपने 50-60 बुलाए हैं उनको जैसे पेपर बांटते हैं, 50-60 पेपर उनको बांट दीजिए, उनको इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दीजिए जिस लैंग्वेज को वो जानते हैं, कि पर्चा है मेरा एक फील्ड प्रोजेक्ट है जो मुझे पूरा करना है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसमें कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, हाँ करना चाहे हाँ कर दीजिए, ना करना चाहे ना कर दीजिए, खाली छोड़ना चाहे खाली छोड़ दीजिए, लेकिन एक पर आपको टिक कर रहा है, एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइए वो टिक करते जाएंगे सारे। 30 क्वेश्चन आपने बनाए थे, 30 बार आप पढ़ेंगे, उन्होंने टिक कर दिया, आधे घंटे में काम खत्म हो गया। जैसे एग्जामिनर पेपर कलेक्ट करता है, आपके पास एक बहन और भाई है, वो कलेक्ट कर लेगा, आपके डाटा कलेक्ट हो गए, आधे घंटे में आपके डाटा कलेक्ट हो गए, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक वादा किया था कि आपको बड़ी दीदी मिलेगी, बड़ी दीदी को बुलाइए, वो उनको ज्ञान सुनाएगी, उनको टोली देगी और उनको विदा कर दीजिए, उनका काम भी खत्म, आपका काम भी खत्म। तो लेकिन जो भाई बहन, जो बहनें सेंटर पर नहीं है, उनसे कलेक्ट करना है, या तो सबके पास जाएं, जो लोग जिन लोगों से आपको कलेक्ट करना है हरेक के पास जाएं, उनको वो दें और उनसे क्वेश्चन भरवाएं, वो भी थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं 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 अभी
उनका नाम
अभी अभी बता रहा हूं। अगर आपका टॉपिक ऐसे मोहल्ले से रिलेटेड है तो उनको, तो मोस्टली हम एक ही है, 50-60 लोगों को इनवाइट करिए कि कल हमारा एक छोटा सा फंक्शन है, बहन भी आएगी और आपके लिए हमने चाय का अरेंजमेंट किया है, वाह खुश हो जाएंगे, दिखे घर में चाय पीना आ जाएंगे, फिर उसी तरह वही प्रोसेस शुरू करिए अपने घर में, उसके बाद दीदी आएगी ज्ञान सुनाएगी, उनको चाय और टोली दे दीजिए, आपके डाटा कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो टॉपिक है वो स्कूल से रिलेटेड है, कॉलेज से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है या और कहीं से है, तो बड़ा इजी हो जाएगा, वहां के टीचर या प्रिंसिपल को कहिए कि हमारा फील्ड प्रोजेक्ट है, हम वैल्यूज के ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं और बच्चों से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो एक पीरियड हमें दे दीजिए, चाहे वो रिसर्च का हो चाहे कोई भी हो, उसमें बच्चों को इकट्ठा करिए, उनको बांट दिए जो आपने क्वेश्चन बनाया है, एक एक क्वेश्चन बोलते जाइए, वो बच्चे आंसर देता जाएंगे, फिर उनसे कलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें डाटा कलेक्शन में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। जैसा आपका टॉपिक होगा वैसे आपको करना पड़ेगा, इसलिए इजी से इजी आप टॉपिक लें ताकि आपका काम हल्का हो जाए। नहीं, वो तो आपके मोहल्ले से पता आपको भी, जहाँ आप रहते हैं आप थोड़ा ही है भी यहाँ आए हुए हैं या कहीं कलकत्ता के बुलाएंगे, आप तो अपने मोहल्ले के बुलाएंगे, अपने गांव के बुलाएंगे ना, तो आपको सारा हर एक आइडिया, और उसमें कोई जरूरी नहीं है, कोई बैलेंस जरूरी थोड़ी है, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब वो हो जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा उसमें।
एक बार किया 15 लोग ही रहे तो और एक बार भी कर सकते?
हाँ बिल्कुल, 3 बार भी कर सकते हैं, आपने बुलाया 20 ही लोग आए तो दोबारा फिर बुला लीजिए, फिर भी 5-7 कम रह गए उनके घर चले जाइए, जो आपने पहले लिस्ट बनाई जरूरी नहीं वही लिस्ट, तो आप और को भी है जिसको आपने बुलाया वो नहीं आया दूसरा आ गया, आपको तो कलेक्ट करने है, आपके तो आपके गांव में 1000 लोग हैं, आपको 100 को बुलाना है तो कोई भी 100 आ जाए 2 बार में 3 बार में 4 बार में। नहीं नहीं नहीं, उसकी कंपैरेटिव स्टडी होगी, फिर वो अलग टाइप का बनेगा आपका, अभी वो डिस्कशन सिलेक्शन ऑफ टॉपिक आएगा। इसके बाद जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिए, डाटा कलेक्ट करने से खाली काम नहीं चलेगा, आपने गुलियानी भाई को कल भंडारे के लिए पैसे दिए तो गुलियानी भाई जो बड़ी बहन को या दादी को देंगे तो ऐसे थोड़ी पकड़ा देंगे, क्या करेंगे वो उनका 100 का अलग बनाएंगे पैकेट, 1000 का अलग बनाएंगे, किसी ने 100-100 के दिए होंगे उसका अलग बनाएंगे फिर उनको देंगे, वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो डाटा आपने कलेक्ट किए हैं उनको आपको प्रेजेंट करना है ताकि दूसरे लोगों के समझ में आ जाए, उनकी टेबल्स के द्वारा आप प्रेजेंट करेंगे, उनको ग्राफिक मेथड से प्रेजेंट करेंगे, उनके आप कोई और मेथड परसेंटेज निकालेंगे कि तभी तो समझ में आएंगे, ऐसे आपने डाटा कलेक्ट कर लिया उसका तो कोई यूज है ही नहीं, जब तक उनको डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट ना करें तो उनको फिर हम डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, ये आपका चैप्टर होगा। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, उन डाटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे आप, फिर उनको अलग अलग छांटेंगे कि पहला क्वेश्चन जैसे है क्या आप नारी सशक्तिकरण चाहते हैं, 100 लोगों का सैंपल लिया, इसमें 80 लोगों ने हाँ कहा, 15 ने ना कहा, 5 ने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे हर क्वेश्चन के होंगे, उसका आप अलग अलग एनालिसिस करेंगे कि हर क्वेश्चन की अलग अलग किस प्रकार से क्या पोजीशन है उसका इंटरप्रेट करेंगे फिर, अर्थात उससे क्या निकला रिजल्ट। और लास्ट में कंक्लूजन एंड सजेशन दो हैं। कंक्लूजन का मतलब है कि लोगों ने जो कहा है, लोगों से जो आपने पूछा है उसके आधार पर आपने क्या कंक्लूड किया, इसमें आपके अपने कुछ नहीं चलेगी, लोगों से ने जो आपको कहा है, आपको राय दी है, जो क्वेश्चन भरवाया है उस पर आपने क्या कंक्लूजन निकाला। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो लोगों ने कहा वो आप सारी बात मान ले, फिर सजेशन आप उसके बारे में, तो दो पार्ट होंगे, एक लोगों की राय का कंक्लूजन और एक अपना सजेशन कि आपकी क्या राय है, आपके क्या सजेशन है फॉर बेटरमेंट। इसके बाद अपेंडिसिस, जब एक होता है तो अपेंडिक्स कहते हैं, मान ली बिब्लियोग्राफी होती खाली इसमें तो उसे कहते हैं अपेंडिक्स, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी है, दो चीजें हैं तो वो प्लूरल बन जाएगा अपेंडिसिस। अपेंडिक्स का मतलब है कि जो लास्ट में लिखते हैं, जैसे बिब्लियोग्राफी में 4 चीजें आ सकती हैं। जब आपने टॉपिक लिया, लिखना शुरू किया तो किताबें आपने पढ़ी होंगी, बुक्स 1-2 पढ़ी होगी, आपने अपनी किताब पढ़ी होगी और किताब पढ़ी होगी, तो इट इज ए पार्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी किताबें। फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ा हो, कई बार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके टॉपिक से रिलेटेड बीच बीच में न्यूज़पेपर में भी आती रहती है, जो वुमेन एम्पावरमेंट है इसके बारे में बहुत आर्टिकल्स आते हैं, खासतौर से जब वो वुमेन एम्पावरमेंट डे होता है तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं, तो उसका लिखेंगे न्यूज़पेपर का। फिर मैगजीन्स वगैरह हैं, जो ज्ञान अमृत है, वर्ल्ड रिन्यूअल है, या बाहर के मैगजीन है, उसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड कभी कोई बात आ गई उसको आप कोट करना चाहते हैं तो उसका नाम भी लिखेंगे। फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट गवर्नमेंट की पब्लिश होती है, नॉन गवर्नमेंट की पब्लिश होती है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक बार अपनी ब्रह्मा कुमारी ने कोई रिपोर्ट पब्लिश की थी वो आपने पढ़ी है और उससे कुछ आपने मैटर लिया है, यानी कि जो बुक्स, जो न्यूज़पेपर, जो मैगजीन्स या रिपोर्ट्स, अगर आपने उससे कोई मैटर लिया है, उसको पढ़ा है, तो खाली नाम लिखना है आपको उसका, उन 5-7 बुक्स के नाम, 5-2-4 न्यूज़पेपर के नाम, अगर आपने मैगजीन पढ़ी है 1-2 मैगजीन का नाम और रिपोर्ट पढ़ी है, जरूरी नहीं है कि आप चारों लिखें। आपका काम बुक से चल गया तो आप खाली बुक्स लिखें, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। बुक्स और वो तो कैसे लिखना है, मैं तो बता रहा हूँ लिखना है, लेकिन उसका स्टाइल क्या होगा अभी आगे आएगा। अभी तो ये पहला पेज चल रहा है आपका, थोड़ा मैं समझा दूं ताकि इजी हो जाए आपको। उसमें एक मेथड है किस हिसाब से ऑथर का नाम लिखेंगे, पब्लिशर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन है जो आपने लोगों से भरवाया था वो भरा हुआ आपको अपनी फाइल में रखना है, उसको वहां ले नहीं जाना जहां आपका वाइवा होगा, वो आपके अपने रिकॉर्ड के लिए है।
तो क्वेश्चनेयर का तो डुप्लीकेशन हो जाता है, एनालिसिस में भी लिखना है उसको और
कहां
तो होगा ही ना,
कहां लिखना है, कहां लिखना है, कहां
एक तो इसमें भी तो क्वेश्चनेयर लिखना
है, प्रोजेक्ट में कोई वहां से पॉइंट आएगा तो
जो लास्ट वाला है ना क्वेश्चन है, ये खाली अनफील्ड एक सैंपल पेपर लगाना है उसमें, जो लोगों से भरवाया उसका तो एनालिसिस कर लिया आपने, इंटरप्रिटेशन कर लिया और उसके एक फाइल बना ली, वो अपने पास रख लिया आपने अपने रिकॉर्ड के लिए, लेकिन एक बगैर भरा हुआ ताकि एग्जामिनर देखे कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे, उसके एक कॉपी यहाँ लास्ट में अटैच करनी है अनफील्ड, सारे क्वेश्चन नहीं बगैर भरे हुए, जिससे आपने क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन ये है दूसरा ये है, उस कॉपी को यहाँ पर अटैच करना है। क्लियर हो गए भाई? अब भाई हम स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं यहीं से एज इट इज। नेक्स्ट देखिए, ये वही है, वो इंग्लिश में था, हिंदी में था, आपको दोनों में से एक यूज करना है। शुरू के मैंने दोनों में कर दिए ताकि थोड़ा इजी हो जाए आपको, वही चीज है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जिनका हिंदी में होगा हिंदी में। अब देखिए भाई, यहां से ये जो आपका सिलेबस वाला बुक आया है उसमें एक वर्ड है सर्टिफिकेट, सिलेबस की बुक में एक सर्टिफिकेट बुक्स में लिखा है,
ये आखिर में देना है
नहीं, इसे अभी देना, इसी सीक्वेंस में चलेगा आपका, जिस सीक्वेंस में चल रहा है उसी सीक्वेंस में चलेगा, अलग से कुछ नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना। दिखाना मुझे देना है कोई, एनेक्सर वन में लास्ट में ये है एज इट इज, इसमें क्या है, एक चीज भरनी है बाकी सारा प्रिंटेड, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द फील्ड प्रोजेक्ट टाइटल्ड, यहां वो डैश डैश आना चाहिए था, हाँ जो आपका टॉपिक है टाइटल के बाद यहां जगह छूटी हुई है उसमें आप लिख देंगे। मान लिया मेरा टॉपिक होता मैं था एटीट्यूड ऑफ मेन टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट ए स्टडी ऑफ सिलेक्टेड पीपल ऑफ आबू रोड, ये तो आपको टाइप करना है, तो उसके बाद बाकी लैंग्वेज इसमें छपी हुई है, इसमें केवल टॉपिक का नाम लिखना अपना और बाकी लैंग्वेज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है यूनिवर्सिटी की। इसका पर्पज ये है कि यूनिवर्सिटी को एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप कि जो मैंने इस टॉपिक के ऊपर काम किया है ये मेरा ओरिजिनल वर्क है, ये डुप्लीकेसी नहीं है, कहीं से नकल नहीं मारी, थोड़ी बहुत नकल मारेंगे आप लेकिन कोई बात नहीं। और दूसरा, इसको मैंने कहीं पहले सबमिट नहीं करवाया, तो मैं बता रहा था कि भाई थोड़ा बहुत इधर से पूछना पड़ेगा, कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि आटे में नमक तो चल सकता है लेकिन नमक में आटा नहीं चलेगा, रोटी फिर ऐसी खाई नहीं जाएगी आपके पास, तो इसलिए इसमें सर्टिफिकेट ये आपको दिया हुआ बनाकर, 2-3 चीज आपको भरनी है, जहां टाइटल्ड है वहां अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, नीचे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट है वहां अपने सिग्नेचर करने हैं, प्लेस जहां है, डेट नहीं वहीं का लिखो ना, जहां दिल्ली के हैं, अहमदाबाद के हैं, कहां के भी हैं, और जो लास्ट है सबमिटेड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन, ये जो वर्ड है हेल्ड ऑन, ये जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जो डेट आ जाएगी एक महीने पहले कि भाई 10 जून को है, 15 जून को है, 20 जून को है, ये वो डेट लिख देंगे, और इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम इसे हमें कुछ नहीं करना, कि जो आई वाले ने आएगा, क्योंकि इसको आपने अपनी बुक में डाला होगा, तो वो देखने के बाद इस पर साइन कर देगा, इंटरनल भी और एक एक्सटर्नल की। ये सीक्वेंस ऐसी रहेगी जिस पे जिस हिसाब से लिखी हुई है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, इसलिए इसकी स्लाइड जरूर लेके जाएं ताकि आपको इजी हो जाए। देखिए जो एनेक्सर 2 है, एनेक्सर 2 इसमें और भी है एक दो आइटम, ये तो मैंने वैसे सैंपल लिया हुआ है। ये एनेक्सर 1 था, ये एनेक्सर लास्ट वाला है। ये भर कर पहले आप मदुरई भेज देंगे इसको। जैसे आप यहां से जाएंगे आपका टॉपिक सिलेक्ट हो जाएगा, एक क्लास और लेंगे, आप अपने टॉपिक छांट लीजिए क्या क्या आपको करने हैं। यहां हमारा जो ऑफिस है उसमें जाकर, क्योंकि वो सारे अप्रूव टॉपिक हैं, अगर आपको वो पसंद आता है तो उसमें नाम ही चेंज करना है आपको। मान ले वो सिरोही का है तो वो दिल्ली का हो सकता है, गाजियाबाद का हो सकता है, क्यों टॉपिक जरूरी नहीं है कि अलग अलग ही हो सारे। वैल्यू एजुकेशन के भी किया है, किसी ने एक स्कूल का किया, किसी ने दूसरे स्कूल का किया जहां आप रहते हैं। तो अपना एक टॉपिक छांट लीजिए, उसका टाइटल छांट लीजिए ताकि वो हम देख लें कि वो अप्रूव हो सकता है नहीं हो सकता। और फिर ये जो एनेक्सर 2 है, ये भरकर इसकी 3 कॉपी, एक कॉपी अपने पास रखेंगे बाय चांस वहां गुम हो जाए, और 3 कॉपी पूरा भरकर आप पांडेवनि भाई को भेज देंगे, जो उनका ऑफिस है मदुरई में, उस पर आप भेज देंगे ताकि एक आध महीने में वो आपका टॉपिक अप्रूव हो गया जाए। तो जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं काम करने का। इसमें फील्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर ये आपको नहीं भरना, जब आप भेजेंगे और आपका तो जाएगा वहां पर, वो उस पर नंबर डालेंगे टू बी असाइंड बाय द डायरेक्टरेट। ये अपना नाम है सब, ये इसका एड्रेस भी दिया है जिस एड्रेस पर आपको भेजना है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, पीसीपी सेंटर, सेंटर पर ही लिखेंगे पीसीपी, नेम एंड एड्रेस, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट एरिया, नीचे सिग्नेचर, और उसके बाद टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड। इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लास्ट वाले फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है। जब आपका टॉपिक वहां पर जाएगा, प्रपोजल जाएगा, वो इसमें अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड अपने साइन कर आपको दे देंगे। हाँ ये जहां आपने अपना पीसीपी 3 कॉपीज, आप वायदा कहां देते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां आपने अटेंड किया है इसको, ये वैसे तो इसको 15 फरवरी तक भेजना है, लेकिन जितना पहले भेज देंगे अच्छा रहेगा। टाइटल और सब्जेक्ट, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। टाइटल का मतलब है आपका एक्चुअल टॉपिक, जैसे मेरा टाइटल था एटीट्यूड ऑफ मैन टुवार्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, और ब्रैकेट में ए स्टडी ऑफ सिलेक्टेड पीपल ऑफ आबू रोड, ये टाइटल है मेरा। सब्जेक्ट का मतलब है वुमेन एम्पावरमेंट, जो फील्ड है वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। तो समझिए क्लियर, सब्जेक्ट एरिया क्या है। कई बार यहां क्या करते हैं आप, मान लिया आपने दिल्ली में भरा है, आप दिल्ली रहते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट एरिया में आप दिल्ली लिख देते हैं। आपने अजमेर के हैं आप और अजमेर में लिया है, तो सब्जेक्ट एरिया अजमेर लिख दिया। सब्जेक्ट एरिया का मतलब वो एरिया नहीं जिसमें आप रहते हैं, बल्कि जो आपने टॉपिक लिया है उस सब्जेक्ट का कौन सा एरिया है, मेन क्या है। जैसे आपने वैल्यू से रिलेटेड लिया है तो वैल्यू एजुकेशन आ जाएगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक लिया हुआ है तो एनवायरमेंट आ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट ये। तो यहां पर यार आपका ऐसा ना कि जब आप क्लास में बैठे हो ना तो दिल और दिमाग और फिजिकली आप यहां प्रेजेंट रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। टाइटल का मतलब है कि जो आपका टॉपिक है, जब मेरा टॉपिक था एटीट्यूड ऑफ मेन टुवार्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट स्टडी ऑफ सिलेक्टेड पीपल ऑफ आबू रोड, ये तो टाइटल हो गया। सब्जेक्ट एरिया का मतलब है कि उसका किस से रिलेटेड है, भाई वुमेन से रिलेटेड है तो वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि एम्पावरमेंट का है वो टॉपिक।
मैं दूसरा टॉपिक सोच रहा था लेकिन आपके बताने के बाद इसी की तरफ में जाए।
ये इजी भी है और अच्छा भी, इंटरेस्टिंग भी है।
इसके बाद क्या कह रहे
हैं,
टाइटल वैल्यू एजुकेशन नहीं होगा। हाँ ये सब्जेक्ट एरिया हो जाएगा, और उसमें आप कौन से स्कूल का करेंगे, कौन से कॉलेज का करेंगे, कहाँ का करेंगे, या जनरल पब्लिक में करेंगे?
एरिया
नहीं, उसे समझ नहीं आया अभी। इसके बाद एक और होगा, एक आपका डेढ़ घंटे का और होगा, उसमें इंडिविजुअल सब हम डिस्कस करेंगे। सिंपली सर, जो आपने टॉपिक लिया है वो टाइटल है, और वो टॉपिक किस फील्ड से रिलेटेड है। फील्ड 10-12 हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड है, या वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, किस से रिलेटेड है आपका, वो उसमें आ जाएगा। वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है कि स्कूल कॉलेज में जाते हैं आप।
हिंदी में बता दो
क्या हिंदी में तो बताइए। हाँ, वो तो महिला सशक्तिकरण था, समझिए, महिला सशक्तिकरण हिंदी में। दूसरा टॉपिक ये हो सकता है कि आप कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जहाँ आप रहते हैं वहाँ कोई स्कूल होगा, हायर सेकेंडरी स्कूल, उस हायर सेकेंडरी, पर्टिकुलर हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का एटीट्यूड क्या है टुवार्ड्स वैल्यू, तो वो आप टॉपिक ले सकते हैं, उसका क्वेश्चन बना लें, और वो जो उसका हो जाएगा टाइटल तो ये हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट एरिया एजुकेशन हो जाएगा। या स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप करते हैं, मेडिटेशन के ऊपर करते हैं, राजयोग मेडिटेशन, कि राजयोग मेडिटेशन से आपको क्या फायदा हुआ, इस टाइप का कोई टॉपिक लेता हूं बता दूंगा मैं, तो उसका सब्जेक्ट एरिया हो जाएगा मेडिटेशन। 15 फरवरी तक भेजना है, उससे पहले पहले भेज दो आप। अब एक दो दिन में सिलेक्ट करो अपने टॉपिक, ताकि आप यहां डिस्कस कर लें और फिर इजी हो जाए। लिस्ट ऑफ टेबल्स, ये मैंने जो स्टार्टिंग लिखवाई थी, अगर आपके टेबल्स बहुत हैं हर चैप्टर में, तो उनकी हमें लिस्ट देनी पड़ती है पहले, कि पहले चैप्टर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर वो चैप्टर है, और जो राइट हैंड साइड पर है डेसिमल के बाद वो टेबल नंबर है। या पहले चैप्टर में दो टेबल हैं, 1112, मान लिया आपकी तीन टेबल हैं तो 111213। दूसरे चैप्टर में आपकी कोई टेबल नहीं है तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरे चैप्टर में आपकी पांच टेबल्स हैं तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, उस टेबल का टाइटल क्या है जो टेबल आपने अंदर बनाई है, और किस पेज पर वो टेबल है। मान लिया तीसरे चैप्टर की पहली टेबल परसेंटेज है, आपका लिखा हुआ है परसेंटेज इन एग्रीगेट, तो यहां लिख देंगे 3.1 परसेंटेज इन एग्रीगेट, और पेज नंबर 40 पर है तो पेज नंबर 40 आ जाएगा। तो ये टेबल चैप्टर और टेबल नंबर, उस टेबल का टाइटल क्या रखा होगा आपने अंदर बनाई, और उसका पेज नंबर, किस पेज पर वो आपकी टेबल है। अगर आपकी टेबल नहीं है ज्यादा तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये तभी बनाया जाएगा अगर आपकी बहुत सारी टेबल्स हैं और उसको आप शो करना चाहते हैं कि वो किस पर है। आपकी बहुत सारी टेबल हैं फिर भी नहीं आप बनाना चाहते इसको, तो भी कोई कंपलसरी नहीं है। इसी तरह से डायग्राम और ग्राफ, वो भी सेम वही है।
उस सीक्वेंस में टेबल के बाद आएगा डायग्राम
से? नहीं, वो तो डायग्राम पहले लिख दो, टेबल पहले लिख दो, टेबल पहले होनी चाहिए, डायग्राम बाद में आता है। एक्नोलेजमेंट, एक्नोलेजमेंट ये आपका अपना है, किस किस को आप एक्नोलेज करते हैं उसमें उनके नाम लिखने हैं सिर्फ आपको। मैं इसका जब लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स करते हैं प्रोग्राम के बाद, मैं इसका धन्यवाद करता हूं, इसका धन्यवाद करता हूं, इसमें मुख्य अतिथि का धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से जिस प्रोजेक्ट में आपको कहीं से भी हेल्प मिली है उसका आप थैंक्स करेंगे, और लास्ट में अपना नाम लिख देंगे। साइन करने ध्यान रखें कि जहां भी आपका नाम होगा उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद ये तो वो थी स्टार्टिंग वाली, अब आपके पांच चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर,
एक चीज में पूछ सकते मेडिकल सब्जेक्ट भी ले सकते
हो? हाँ, कोई भी ले सकते हो आप, कोई टॉपिक ले सकते हो, मेडिकल का हो या नॉन मेडिकल का हो, हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो, हिंदी का हो, किसी साहित्यकार की स्टडी भी आप कर सकते हैं। जैसे चैप्टर वन अगर आपका हिंदी में है तो हिंदी में लिखें अध्याय वन भूमिका, अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं चैप्टर वन इंट्रोडक्शन, दोनों को आपको नहीं लिखना, हिंदी और इंग्लिश को, क्योंकि एक लिखना है, ये तो आपको बताने के लिए है। अब चैप्टर वन में 10-12 पेज आपके होने चाहिए, या तो 500 स्लाइड दी हुई है। इसमें ये चैप्टर मोस्टली 90% आपको बुक से मिल जाएगा। ये वुमेन एम्पावरमेंट है, 30-40 पेज दिए हुए हैं, कुछ आपको बाहर की किताब से मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर ये, इसलिए जो टॉपिक्स आपके किताब में है और उससे रिलेटेड टॉपिक आपके आ गए उसमें सिलेबस में, तो उनको लेंगे तो ज्यादा आपको इजी होगा। ये महिला के बारे में आप 5-7, 10-12 पेज लिख देंगे अपने, ये वैसे जो बनाया था उसका एक स्लाइड है 5-7।
पेज के अपना नाम लिखना जरूरी
नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक उसमें कहीं नाम नहीं आएगा, ये तो वैसे प्रोजेक्ट स्लाइड बनते हैं उसका नाम आ जाता है। उसमें तीन बातें मैंने और बताई थी कि ऑब्जेक्टिव महिलाओं के महत्व को समझना एवं उसके अधिकारों को जानना। नहीं, अब चैप्टर वन ही चल रहा है, चैप्टर वन में तीन बातें और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली रुकावटों को पहचानना, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसाओं के विभिन्न प्रकारों को जानना, सशक्तिकरण के विभिन्न तरीकों को तलाशना, महिला अधिकारों से उन्हें अवगत कराना, ये हमने ऑब्जेक्टिव लिए हैं। आपके ऑब्जेक्टिव ज्यादा भी हो सकते हैं, एक आधा कम भी हो सकता है, इससे बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ये तो किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आप अपनी स्टडी करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये खाली हो जाए 1, 2, 3, 4, 5। लिमिटेशंस क्या है आपकी स्टडी की, हर एक की पीछे
इम्पोर्टेंस
लिमिटेशन।
हाँ, लिमिटेशन पॉइंट से लिख सकते हो, लिखने का तरीका आपका अपना है, उद्देश्य लिखने चाहे उसको भी पैराग्राफ में लिख सकते हो, जहाँ आप जैसा करना चाहें। लिमिटेशंस, ये सब की लिमिटेशन अपनी अपनी होगी। जैसे इसकी लिमिटेशन क्या है, इस अध्ययन में बस इसमें रहने, इसमें एक गलत होगी वर्ड, एक कस्बे में रहने वाले पुरुषों की महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति क्या सोच है उसका अध्ययन किया गया है। एक कस्बे के 100 पुरुषों को सैंपल लिया गया है, उसमें बच्चे, युवा और वृद्ध सभी प्रकार के पुरुषों को शामिल किया गया है। इसमें एक लिमिटेशन ये है कि इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि हम मेल मेंबर की सोच जानना चाहते हैं। 20 प्रश्नों की प्रश्नावली बनाकर उनको तीन भागों में बांटा गया है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि हमने जो क्वेश्चन लिए 20 लिए हैं। तीसरा लिमिटेशन ये है कि हमने उनको तीन भागों में बांट दिया, अब चार भागों में बांट सकते हैं, दो में बांट सकते हैं। इन 20 प्रश्नों के उत्तर उनसे व्यक्तिगत रूप से बिना किसी दबाव और भेदभाव को जानने का प्रयास किया गया, जिसे अध्ययन को सही रूप दिया जा सके। इस अध्ययन में प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। एक ये लिमिटेशन है, आप प्राइमरी भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें सेकेंडरी भी यूज होगा, जहां क्वेश्चन नहीं बनाया। प्राइमरी का मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन, मैंने आपको बुलाया अपने घर में सेंटर पर, आपसे इंटरेक्शन की, मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने उसका जवाब दिया, इसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। लेकिन कई बार इससे काम नहीं चलता, आपने बुक्स भी यूज की हैं, नेट भी यूज किया है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपको मिले डायरेक्ट पूछने से, वो प्राइमरी डाटा। और एक फील्ड प्रोजेक्ट में दोनों प्रकार के डाटा यूज होते हैं, कुछ हम डायरेक्ट भी पूछते हैं और कुछ दूसरे तरीकों से भी, नेट से भी लेते हैं, बुक से भी लेते हैं, मैगजीन से भी लेते हैं, न्यूज़पेपर से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा। तो इसमें दोनों प्रकार के डाटा को हमने यूज किया है।
हम लोग को सीडी में मिल जाएगा ना, जो हम
सब वो दिया हुआ है अशोक भाई से, आप जाने से पहले लेके जाना इसको, ये आपको एक सैंपल मिल जाएगा, इसके आधार पर आपको थोड़ा इजी हो जाएगा पूरा करने में। फिर इस फील्ड प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या, उसको 2-3 पेज लिखे, तो एक ही स्लाइड बनाई है एक सैंपल के लिए, क्योंकि वैसे तो 60-70 पेज हो जाते। ये पहला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 15, 16, 17 जितने पेज आप लिख सकते। उसके बाद ये साहित्य, इसकी स्पेलिंग गलत है, सैप है वो आएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसमें से एक लिखेंगे, आज रिव्यू ऑफ लिटरेचर और साहित्य की समीक्षा। एक चैप्टर जो पेज होगा उस पर खाली एक चैप्टर लिखेंगे, वहां से स्टार्ट नेक्स्ट पेज पर करेंगे। देखिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, ये आप नेट से ले लेंगे, इसमें बहुत मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे रेफरेंसेज आपको आ जाएंगे, उसमें आपको लगे किसको छोड़ें किसको रखें। जैसे इसमें एक राकेश चंद्रा का लिया है, उसने इसके बारे में क्या कहा होगा, FHS एक है संस्था उसका लिया हुआ है, अमीन बेकर और बेस इसका एक लिया हुआ है, ऐसे 5-6 ले लेंगे आप, 2-2 पेज, फिर इसके 7-8 पेज, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आपने जो डाटा कलेक्ट किए हैं किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, थोड़ा सा फिर वही बताएंगे कि डाटा जो कलेक्ट किए हैं आपने उसमें कितने क्वेश्चंस थे, कैसे था, उसको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देंगे। फिर आपने उसको चैप्टर को कितने भागों में बांटा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में क्या क्या आपने लिखा है। फिर वो क्वेश्चंस जब आपने उनसे पूछे होंगे और फिर उन डाटा को आपने कलेक्ट कर लिया, फिर उनको एनालाइज किया आपने, तो उसकी टेबल बनाई हुई है। जैसे पहला क्वेश्चन था कि आप नारी सशक्तिकरण चाहते हैं, तो डिफरेंट लोगों से पूछे, फिर आपने उनको कंपाइल किया और पता लगा 100 में से 70 ने हां कहा था कि हम चाहते हैं, 25 ने मना कर दिया कि नारी सशक्तिकरण की जरूरत ही नहीं है, और 5 न्यूट्रल रहे। एक फोर्थ क्वेश्चन और पूछा था आपने, क्या लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसमें भी केवल 55 ने कहा यस दी जानी चाहिए, 30 ने कहा कोई जरूरत नहीं। मैंने उस दिन बताया था आपको, सीरियल एक आता है, आपने देखा होगा, मैं भी एक दिन वैसे देख रहा था, वो आ गया संध्या, एक सीरियल है और उसमें वो कहते लड़कियों को शिक्षा देने क्या जरूरत है, घर में लड़ाई हो गई, वो बीए हो गई और उसकी लड़ाई होगी कि घर सारे मोहल्ले वाले कहने लगे ये तो बिगड़ जाएगी, शिक्षा दे दी घर के बाहर जाएगी, लोगों से मिलेगी। मतलब ऐसे हैं, हम बीके सोचते हैं ऐसा हो सकता है, ऐसा है, गांव में आज भी ऐसा है। जो
किस पोजीशन में है, एक हफ्ते से देखा नहीं।
मैं तो वेरी गुड एक सेवन क्वेश्चन देखिए, ये जब गोयन साहब की क्लास होगी वो बताएंगे किस पोजीशन में है। क्या पुरुषों को नारियों पर शक करने का अधिकार है? अगर आपने बीके ले लिए ना तो क्या कहेंगे, किस बात का अधिकार, शक करने का अधिकार है? आपको लाड साहब बने हुए हो, आपको किसने अधिकार दिया? लेकिन जब वास्तव में पूछा गया, एक हमारा वकील है उसने कैटेगरी कहा यस हमें नारियों के ऊपर शक करने का अधिकार है, पता नहीं है बाद में क्या क्या करती हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, गांव में अब भी हैं और यहां भी, जब रिजल्ट निकला तो 30 ने कहा हां, 60 ने मना कर दिया। लेकिन एक नाइन्थ क्वेश्चन पूछा, क्या परिवार में कम से कम एक लड़का होना चाहिए? 80% ने कहा हां, वैसे कहे लड़का लड़की एक बराबर, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं और वहां एनालिसिस में लिखा है कि फिर उनका दाह संस्कार कौन करेगा, क्या लड़के के बगैर वो मुर्दा घर में पड़ा रहेगा, क्या संस्कार नहीं होगा? जब सारी आत्मा ऊपर जाएंगी फिर दाह संस्कार कौन करेगा, फिर ढूंढते रहना लड़का कहां है, लड़का कहां है, ना लड़का मिलेगा ना कुछ और मिलेगा। तो अब भी इस प्रकार के विरोधाभास हैं गांवों में और शहरों में। तो इस टाइप का ये फिर और क्वेश्चन पूछे, जैसे क्या दहेज लेने और देने में कोई बुराई तो नहीं है? एक 20वां क्वेश्चन पूछा, 20 ने कहा क्या बुराई है, कुछ आ ही रहा ना, कोई बुराई नहीं। लेकिन 80% ने कहा नहीं बुराई है। क्या पुरुषों को ही यह तय करना फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करवाया जाए या नहीं? वुमेन एम्पावरमेंट सारे आ जाएंगे ना, इसका ना वुमेन को आप कंसेंट नहीं कर रहे, एम्पावरमेंट क्या हुई उनकी, आप खुद ही तय कर रहे हैं हमें करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। तो वुमेन एम्पावरमेंट किस बात की, एम्पावरमेंट का उसको अपना सहभागी बनाओ, उनसे भी राय लो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये इसमें मैं 20 या 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, 20 होंगे तो 20 लिखेंगे, 30 होंगे तो 30 लिखेंगे, और उनको फिर आप एक परसेंटेज के फॉर्म में भी कर सकते हैं, एग्री कितने ने किया, डिसएग्री कितने ने, और नो कमेंट। हम थोड़ा फास्ट लेंगे, 5-7 मिनट हो रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये इंपॉर्टेंट है। एमएससी की 2-3 डेजिटेशन रिजेक्ट हो गई थी लास्ट ईयर यहां हमारे अमाउंट में। इसमें थोड़ा सा आपको चार्ट वगैरह बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाने पड़ेंगे, डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। बेस्ट ये है, वैसे अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट लेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड अलग, लिटरेसी से अलग, और फिर उनको कंपाइल इकट्ठा कर देंगे, कैटेगरी वाइज उनका चार्ट बना देंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन कम है, 20 है, तो आप क्वेश्चन वाइज भी उसको एनालाइज कर सकते हैं और क्वेश्चन वाइज उनके डायग्राम बना सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप नारी सशक्तिकरण चाहते हैं, उसमें एक टेबल बनाई थी आपने, 70 ने कहा हम चाहते हैं, 25 ने मना किया था, 5 ने कहा था न्यूट्रल। उसको अलग अलग डायग्राम के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, या और दूसरे तरीके से, इसमें भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुझे ध्यान है जो हमने 88 में पीएचडी की थी, उस समय कंप्यूटर वम्प्यूटर इतना ना आता था ना था, तो हम अपनी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, पानीपत से कुरुक्षेत्र जाते थे, वहां एक आर्ट एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट था, उनको बताते थे ये हमें बनाना है 70 25 35, फिर वो हाथ से बनाता था, फिर एक हफ्ते बाद जाते थे, फिर उसको लाते थे, और पैसे बहुत खर्च होते थे। अब तो कुछ नहीं है, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर सारी चीज अवेलेबल है, आप फिगर डालेंगे, क्लिक करेंगे, वो बहुत सारी आपके चार्ट बनकर आ जाएंगे, जो आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, ना कहीं जाने की जरूरत है, घर बैठे काम हो सकता है। जो जानते हैं वो उसमें कौन सा एक सॉफ्टवेयर होता है, एक्सेल होता है क्या, एक्सेल होता है सॉफ्टवेयर, ये भी फ्री में डल जाते हैं। इसी प्रकार से हर क्वेश्चंस का आप बना लेंगे, सेम पैटर्न है। एक आपने क्वेश्चन पूछा था कि घर में सद्भावपूर्ण वातावरण तभी हो सकता है जब नारी अपने आप को एडजस्ट कर ले। उनका मानना क्या था कि झगड़े की जड़ जो है वो नारी है, वो एडजस्ट नहीं करती इसलिए झगड़ा होता है। आपने क्वेश्चन पूछा, आपने कह रही बात सोचो भी मैं ऐसे कैसी बात कह सकता हूं, आपने तो उनसे लोगों से पूछा, तो उसमें क्या जवाब मिला, 40 ने कहा यस, नारी अगर अपने आप को एडजस्ट कर ले तो घर में वातावरण सद्भावपूर्ण हो सकता है, कहीं झगड़ा हुआ होगा किसी के साथ। 55 ने मना कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, नारी के साथ साथ पुरुषों को भी एडजस्ट करना चाहिए। हम भी के थोड़ा कहेंगे ऐसे कि नारी को एडजस्ट करना चाहिए, पुरुषों को पहले एडजस्ट करना चाहिए। तो उसको हम टेबल के फॉर्म में बना देंगे। तो ये आंसर कोई जरूरी नहीं आपके हिसाब से चले, लोग अपने हिसाब से आंसर देंगे, उसमें इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आप अपना सजेशन देंगे कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या कहा उनके हिसाब से, और लास्ट में अपने हिसाब से आप करेंगे। हाँ हाँ, कैसे भी कर दो, ये तो मैंने ना आपके अलग बनेंगे। दोनों बनाओ ना, दो तो बनेंगे, दो बनाओ,
बनेंगे तो दोनों, लेकिन एक ही देना
नहीं, दोनों देने हैं, नहीं दो दे दो ना, दो अच्छा है, या एक देना चाहे तो जो नीचे वाला है ग्राफ वो दे दो,
दो
हाँ एक ही, दो दो ढंग से उसको प्रेजेंट किया हुआ है, तो लास्ट वाला दे सकते हैं डायग्राम, हर क्वेश्चन का, सबके अपने अपने होंगे आपके। तो इस तरह से 1 से 20 तक, 1 से 25 तक, 1 से 26 तक ऐसे आप बना लेंगे, कैटेगरी वाइज बना सकते हैं और इंडिविजुअली बना सकते हैं। हाँ एक पेज पर एक, 20-22 पेज बनेंगे आपके, ये यही मेन है आपका। और लास्ट में कंक्लूड करेंगे, इसमें दो पोर्शन हैं, एक लोगों ने क्या कहा उसके बारे में, और एक आपके अपने क्या सजेशन है उसको बारे में, जिसे उपयुक्त विश्लेषण से पता चलता है कि अभी पुरुषों की नारी के प्रति सोच बहुत ही नैरो है, संकुचित है, और वो इस आस्था पर जी रहे हैं कि भारत पुरुष प्रधान देश है और सभी निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों को ही है। इस तरह से जो आपने ऑब्जर्व किया होगा उसको आप दो चार चार पांच पेज में लिख देंगे और लास्ट में फिर अपने कुछ सजेशन देंगे कि इसमें कोई शक नहीं, शहरों में जागृति आई, अवेयरनेस आई है, वे अपने हक के लिए लड़ते भी हैं, महिलाओं की रक्षा के लिए जो विभिन्न महिला आयोग बने हुए हैं उसमें अपना पक्ष भी रखती हैं, शहरों में पुरुषों में भी जागृति आई है और वो महिलाओं को सम्मान देते हैं और अपने आगे से रखते हैं, लेकिन छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी अवेयरनेस की आवश्यकता है, उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता है। अतः हमारा भी यही सुझाव है कि नारी सशक्तिकरण देश की पहली पसंद होनी चाहिए, तभी हम देश को उच्च शिखर पर ले जा सकते हैं। इसके लिए कानून और आयोग कुछ नहीं कर सकते। कानून तो बहुत पुराने बने हुए हैं, बहुत दिनों से बने हुए हैं, बहुत कठोर बने हुए हैं, लेकिन हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक वो कानून कोई काम नहीं करेंगे। आवश्यकता अपनी सोच को बदलने की और मूल्य एवं आध्यात्मिकता को अपने अंदर कूट कूट कर भरने की, जब तक ये आपके अंदर नहीं आएगा तब तक महिला सशक्तिकरण की बात हम नहीं कर सकते। लास्ट में अपेंडिक्स, इसमें बुक्स जो है दो ही लिए, इसमें चार ले सकते हैं, बुक्स और न्यूज़पेपर, या इसमें दो चीज और ले सकते हैं आप, मैगजीन्स और रिपोर्ट्स, और लास्ट में क्वेश्चनर जो आपने बनाया था उसकी अनफिल्ड कॉपी। अब यहां बुक्स में एक ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी मर्जी से किताबों के नाम ही लिखेंगे। पीएचडी और एमफिल करते हैं वहां तो और भी बहुत टेक्निकलिटी है, लेकिन वहां यहां पर नहीं जाएंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कम से कम इतना जरूर लिखेंगे। वहां तो पेज नंबर भी लिखना पड़ता है और उस पेज को वहां जहां आपने उसको कोट किया है वहां भी उसको बताना पड़ता है, नंबरिंग डालनी पड़ती है। यहां केवल उस बुक को यूज किया है उसको लिखना पड़ेगा, कहां यूज किया है, किस पेज से यूज किया है उसको, यहां ना भी लिखे तो भी काम चल सकता है। पीजी लेवल पर पांच बातें होनी चाहिए इसमें। सबसे पहले उस ऑथर का नाम, और ऑथर में भी पहले उसका सरनेम, जैसे भट्ट डॉक्टर जयश्री एस कोमा, उसके बाद उस बुक का नाम जहां से आपने वो लिया है, मान लिया उसका नाम है वुमेन कल्चर, किताब का नाम है, टॉपिक का नाम नहीं है, उसके बाद वो किताब कहां से पब्लिश हुई है, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, किस शहर से पब्लिश हुई है, न्यू दिल्ली, किस ईयर में पब्लिश हुई है, 2003। रनिंग में लिखना है इसको, नंबर एक दो तीन चार नहीं, पहले उस ऑथर का नाम, सरनेम पहले, किताब का नाम, पब्लिशर, उसके बाद शहर और उसके बाद ईयर। इंग्लिश में है तो इंग्लिश से, हिंदी है तो हिंदी में, ये कोई इंग्लिश और हिंदी मीडियम का नहीं है, आपने कोई मैटर हिंदी मीडियम से लिया है बुक से तो हिंदी का लिखेंगे, इंग्लिश से लिया तो इंग्लिश से। जे मान लो हिंदी किताब से आपने कोई लिया है रेफरेंस, हरिदेश पांडे डॉक्टर सुलोचना, भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएं, श्रुति पब्लिकेशन, जयपुर 2001, हर एक में वही पांच बातें आएंगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जहां जहां से आपने लिया होगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जितनी किताबें ज्यादा लिखेंगे उतने आपके नंबर मिलेंगे, नेट पर जाए आपको 100 किताबों की लिस्ट आ जाएगी और आपसे एग्जामिनर पूछेगा किताब कहां देखिए, कह जी मैं तो नेट से उतार दी, दो पढ़िए दो लिखो, चार है तो चार लिखो, इसको ज्यादा नंबर नहीं है, लेकिन जो आपने लिखा हो सही लिखा हो। इसके बाद न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी आप कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग भी बना सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, अगर आपका एक आदि है तो उसी में, और आपका बहुत ज्यादा है तो फिर अलग अलग कर सकते हैं। हिंदी में है तो हिंदी में, मान लिया आपने हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रिब्यून, या वर्ल्ड रिन्यूअल, या ज्ञान अमृत, जहां से भी आपने लिया है आपके टॉपिक से रिलेटेड है उसको आप लिखेंगे। और लास्ट में फिर जो क्वेश्चन आपने बनाया था अनफिल्ड उसके कॉपी आपको लगानी है। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी में, और आपका इंग्लिश में है तो फिर वो इंग्लिश में लगा देंगे। दोनों में से एक लगाना है आपको, हिंदी वाला हिंदी में और इंग्लिश वाला इंग्लिश में। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।